29th March 2015, Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 20, Slok Number 37, by His Grace Kamalochan.
Namo Vishvam Sthapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sadrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badan Sahagana Dalita Shri Vishakanvitamsya He Krishna Karuna Sindhau Dinabandhau Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Naptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpadarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna. पिछले दो श्लोकों का भागवतम क्लास में ही दिया था. अभी ये श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे. कल सार रूप में आपको कहा गया था, कल नहीं परसों, कल रामनवमी था, परसों का जो भागवतम क्लास में, कि भगवान को जानने के लिए तरीका है उनकी शक्तियों के द्वारा जानना. शक्तियों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है. भगवान की इस जगत में दो शक्तियाँ प्रकट है, एक जीव शक्ति है, दूसरा है उनकी अपरा शक्ति, वो है भौतिक शक्ति. भगवद गीता में भगवान इन दो शक्तियों को वर्णन कहते हैं, भूमिराप नलो वाय खम मनोबुद्धि रेव च अहंकार तीम ने भिन्ना प्रकृति रिष्ठा अपरेयमितस्त्वन्यम प्रकृति विद्धि में पराम. श्लोक में अपरेयम एयम जो पहले कहा गया जो चीज है वो कौन सा है, अपरा है. अपरेमितस्त्वन्यम अन्यम इसके अलावा कुछ और है, कौन सा शक्ति है, वो है प्रकृति विद्धि में पराम, पराशक्ति है. तो विद्धि में इसका व्याख्या करते हुए जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि भगवान को अगर जानना है, ये जान इसके द्वारा जानना होगा. किसके द्वारा जानना होगा, ये जीव शक्ति उनका है और ये प्रकृति जो है वो भी उनका है. तो उनको जानने के लिए दो ही रास्ता है, एक जीव तत्व को जानना, एक जड़ तत्व को जानना. तभी परतत्व को जाना जा सकता है. परतत्व का खाली व्याख्या सुनते जाएंगे लेकिन उसकी वास्तविक अस्तित्व का अनुभूति जो है वो केवल ये दो शक्तियों के द्वारा होगा. ये है जीव शक्ति, दूसरा है. इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, ये जो अपरा शक्ति है, जड़ वस्तु है, भौतिक चीज़ है, उसको उसके ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं. ये एटम क्या है, न्यूक्लियस क्या है, वो सब चीज़ के पीछे क्या है, हमको सत्य जानना है. लेकिन समस्या क्या है, उनके हिसाब से जो जड़ वस्तु को समझने जाएंगे, जड़ पदार्थों को, प्रकृति को समझने जाएंगे, ना वो जड़ पदार्थ को समझ पाते हैं, ना वो परतत्व को जान पाते, सत्य को जान पाते, भगवान को जान पाते हैं. जो ये भौतिक पदार्थों को भी बराबर नहीं जान पा रहे हैं, प्रकृति को भी बराबर नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पा रहे हैं. लेकिन वेदों में, श्रीमद् भागवतम में ये प्रकृति के विषय में बहुत कुछ कहा गया है. प्रकृति का वर्णन बहुत किया गया है. पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्ध भौतिक है, लेकिन भौतिक तत्वों का वर्णन बहुत गहराई से किया गया है. क्यों? क्योंकि ये भौतिक तत्वों को सही तरीके से समझेंगे तब आप भगवान को सही तरीके समझ सकते हो. ये बात सही है, भौतिक चीज़ों को समझे बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते. ये सिस्टम बनाया भगवान ने. तो इसलिए हम कोई जड़ वस्तु है उसके विषय में जो ज्ञान है उसको स्वीकार करना ज़रूरी होता है. लेकिन अगर वो सही तरीके से नहीं सीखेंगे भगवान को जान नहीं पाएंगे. अब देखिए दत्तात्रेय 24 गुरुओं को उन्होंने स्वीकार किया। 24 गुरु कहाँ से स्वीकार किया उन्होंने? प्रकृति से देख के स्वीकार किया, हाँ, लोगों का व्यवहार को देख के स्वीकार किया। उन्होंने पहाड़ को गुरु को स्वीकार किया, धरती को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वृक्ष को गुरु के रूप में स्वीकार किया। यानी ये प्रकृति का परिशीलन जो है ये शिक्षा का, ये वैदिक शिक्षा का आधार है। तो तैतृय उपनिषद में वैदिक शिक्षा में से उपनिषद मतलब शिक्षा ही देता है। तो भृगो वही वरुणी ही, तो उधर भृगु वरुणी उन दोनों के बीच संवाद है, पुत्र पिता है। तो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे परम सत्य के बारे में बताओ, ब्रह्म के बारे में बताइए। तब ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा कि मैं सीधा नहीं बताऊंगा, आप ही उसका ब्रह्म क्या है आप अनुभव से जानो। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ जंगल में, मैं खाली हिंट मात्र देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो या इमानी भूतानी जायंती न जातानी जीवंती प्रलियंत विषम विशंती। ब्रह्म वो है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, जहाँ से सब कुछ, जिसके द्वारा सब कुछ पालन होता है और जिनके अंदर सब विनाश होता है, सब प्रलय हो जाता है, जिनके अंदर समा जाता है। अभिषम विशंति में प्रवेश कर देना। तब उन्होंने कहा जाओ जाके देखो, ये तो या इमानी भूतानी जायंती ना, जाके देखो। जब उनको देखोगे ब्रह्म समझ में आएगा। भूतानी मतलब वो चीज़ जो उत्पन्न हुआ उसको भूत कहा गया है। तो जंगल गया, जंगल जाके सब देखा, वृक्ष को देखा, पौधों को देखा, पेड़ को देखा, आकाश को देखा, पानी को, जल को देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तपस्या करने लगा, तपस्या करने लगा, प्रकृति को परिशीलन करने लगा। तब उन्होंने एक चीज़ देखा, क्या देखा? सारे जितने प्राणी ना सब खा रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे, खा रहे। तो खा के क्या कर रहे? बड़ा हो रहे, बड़ा होने के बच्चे को पैदा कर रहे हैं और बच्चे को पैदा करते हैं। और उन्होंने ये देखा यही प्राणी किसी और चीज़ का आहार भी बन जाता है, आहार बन खाता है और बच्चे को पैदा भी करता है और क्या करता है ये किसी और प्राणी का आहार मतलब अन्न। तब आया आगे गुरु के पास ने कहा अन्नादेव भूतानि जायन्ति अन्नादेव भूतानि जीवन्ति अन्नादेव प्रलीयन्ते। तूने कहा अन्न में ही सब समा जाता है, अन्न से ही सब जीव उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा ही सब पालन होता है। तूने वही देखा ना, सभी दिखाई पड़ रहा है ना प्रकृति में दिखा। तो उन्होंने कहा उपस असारा वापस जाओ ये ठीक नहीं है और तपस्या करो, प्रकृति का और परिशीलन करो। उन्होंने और परिशीलन किया, ध्यान से देखा तो पता लगा कि अन्न खाने पर भी मरता क्यों है, अन्न से जीवित होना चाहिए। तो अन्न से मरना, अन्न जब तक अन्न खाता रहेगा तब तक जीवित होना चाहिए, अन्न खाने के बाद भी मरता क्यों है व्यक्ति? तब उसको स्ट्राइक हुआ, ये प्रकृति को देखे, इसको कोई क्लासरूम वैसरूम नहीं। उधर वैदिक जमाने में कोई ऐसा स्कूल नहीं था, क्लासरूम नहीं था, फैन में लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सब चीज़ें फालतू चीज़ें हैं। सबसे बड़ा क्लासरूम है दुनिया, ही क्लासरूम है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, दुनिया ही क्लासरूम है। जंगल में जाओ वही बड़ा क्लासरूम है, सबसे बड़ा क्लासरूम है कि नहीं, नेचुरल क्लासरूम। तो जाके तपस्या करते थे क्योंकि जब तक वो गुरु बोलेंगे नहीं खाओगे तब तक खाने का कोई वे ही नहीं है। जंगल में कोई चीज़ मिलता भी है ऐसा नहीं कि लेके खा लिया, शिष्य को ऐसी इतना शिष्टाचार थी उस समय, तो जो भी मिलता है जंगल में लेके आता है तो गुरु को देना है, गुरु जब बोले तभी खाना पड़ता, तपस्या है। तो जंगल में घूमते घूमते हर चीज़ को देख रहे थे, उन्हें ये पता लगा कि खाने पर भी वो जीव जीवित नहीं है, उसके मतलब है आहार से परे कुछ चीज़ है, वो क्या है? तब वो आके कहा प्राणादेव ही भूतानि जायन्ति प्राणादेव ही भूतानि जीवन्ति प्राणादेव प्रलियन्ति विशन्ति अभिषम विशन्ति। अन्न के बाद क्या हुआ? प्राण। तब उन्होंने कहा ठीक है जाओ, ये भी गलत है, वापस जाके देखो। अभी प्राण के वजह से ही सब जीवित है, बहुत तपस्या करने के वापस चर्चा किया, प्राण है, शरीर है, शरीर के अंदर प्राण है कि नहीं? शरीर है, शरीर के अंदर प्राण है, जाता क्यों है, उधर ही क्यों नहीं रहता? देखिए प्रकृति को देख के तपस्या करते करते, तपस्या मतलब क्या है? मनन, प्रकृति को देख के जो हमको उससे शिक्षा मिलती है उसके ऊपर मनन करना उसको तपस्या कहा गया है। ये नहीं कि पूरा दिन भूखा रहा और दिन भर निर्जला किया स्मरण कर रहा है, कब कल 6:36 होगा लाइन लगाएंगे, 6 बजे से लाइन लग जाता है पानी का, तो ये थोड़ी तपस्या बोला जाता है। तपस्या मतलब अभी इतना भगवान की चिंतन में, ब्रह्म ज्ञान में, इतना भगवत ज्ञान में, स्मरण में, तत्व को खोज में इतना मग्न हो गया, वो खाने पीने का होश ही नहीं रहा, इसको तपस्या कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आज उपवास है, आज कुछ नहीं खा रहा हूँ, देखो घर में बहुत सारा चीज़ें बनाए लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन सोच रहा है दिन भर, तो तपस्या बोला तो तपस्या किया। तब उन्हें यही विचार पे आया कि प्राण है, प्राण को शरीर से निकालने वाला कोई है, वो अधिदैव है। तब उनने सोचा ये प्राण से परे कुछ चीज है, तब उनने निष्कर्ष पे आया प्राण से करे, प्राण तो सूक्ष्म चीज है और उससे परे एक आत्मा करके कुछ है। तब वाके कहा ज्ञानादेव ही भूतानि जायन्ति, ज्ञानादेव ही भूतानि जीवन्ति, ज्ञानादेव ही प्रलिप अभिषम विशन्ति। ज्ञान मतलब इधर आत्मा की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं, जाओ वापस, वापस तपस्या करने बैठा, तपस्या करने बैठा। मैं ज्ञान ज्ञान बोल रहा हूँ, है क्या ये ज्ञान, दिखाई तो नहीं पड़ता है। हाँ अभी ये ज्ञान जो है, हाँ जो आत्मा जो है उस, वो तो सभी शरीर में है, सभी शरीर में एक एक, एक ऐसा आत्मा है, लेकिन ये आत्मा आया कहाँ से है? और सभी शरीर में एक एक अलग अलग आत्मा होने पर एक एक अलग अलग प्रकार व्यवहार कर रहा है, सभी एक जैसा थोड़ी ना है। तब उसने बहुत परिशीलन किया, बहुत तपस्या किया, तब उसको पता लगा कि परमात्मा करके कोई वस्तु है, जिसकी साक्षात्कार आत्मा करता है। तब पाक्यों ने कहा विज्ञाने वही भूतानि जायन्ति विज्ञानमय। बाद में कहा ठीक है लेकिन फिर भी जाओ, फिर भी जाके तपस्या करो। प्रकृति में बहुत तपस्या किया, बहुत उन्होंने अन्न किया, आत्मा है परमात्मा है, लेकिन सभी लोग जीते किसके लिए है? आत्मा है परमात्मा है पड़ा हुआ है क्या फायदा, लेकिन सभी जीवों में एक प्रवृत्ति को देखा, एक प्रवृत्ति देखा उनने, सभी लोग आनंद का खोज कर रहे हैं। इसका खोज कर रहे, आनंद का खोज कर रहे। तब आके उन्होंने कहा आनंदादेव ही भूतानि जायन्ति, आनंदादेव ही भूतानि जीवन्ति, आनंदादेव भूतानि प्रलयं विशन्ति। तब उन्होंने कहा तद् ब्रह्मा। तब उन्होंने बोला नहीं जाओ वापस जाओ जंगल में, तब बोला तद् ब्रह्मा, तुम जिसके बारे में पूछने के लिए आए थे ना, तो ये काम करने के लिए उनको 5 साल लग गया। 5 साल एक 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 साल एक एक चीज की खोज में क्या। तब ब्रह्म के परिभाषा करते हुए उपनिषद में कहा गया है, वेदांत सूत्र में कहा गया है आनंदमयोभ्यसात। ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान कौन है? आनंदमय है। तो भगवान आनंदमय है, तो ब्रह्म परब्रह्म है। ये इसका एक्सपेरिमेंट, इसका अनुभव, इसका परिशीलन कहाँ किया उन्होंने? प्रकृति को देख के किया है कि नहीं? तो प्रकृति को परिशीलन करने के द्वारा ही परतत्व का ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। ये वैदिक तरीका है समझने की। आप में भागवतम में भी बहुत बहुत जगह उदाहरण भी दिया जाता है भगवान का वर्णन का उदाहरण। तो किसी चीज का उदाहरण क्या, किसका उदाहरण दिया जाता है? प्रकृति का उदाहरण दिया जाता है कि नहीं? कोई भी कहीं भी जाओ प्रकृति का उदाहरण दिया जाता है। तो एक जगह क्लास में कुछ ऐसा वर्णन हो रहा था, जैसे भक्ति का महिमा का वर्णन करते हुए भागवतम में देवता लोग तुषावघाति नाम, वो श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है, जो भी आप और कोई अन्य मार्ग को स्वीकार करोगे, योग है ज्ञान को, तो क्या होगा? वो भूसा को कूटने की बराबर है, उससे कुछ फायदा होगा? जो धान के ऊपर उस भूसा ही बोलते हैं ना, तो उसको कूटते जाओ तो क्या फायदा? तो अगर आप ये जो उदाहरण जो है बॉम्बे में जाके देंगे किसी को, उसको समझ में नहीं आएगा, उसको भूसा क्या होता है वो नहीं मालूम, खेत क्या होता है वो नहीं मालूम, उसको कूटना क्या होता है वो नहीं मालूम, क्योंकि उसका चावल जो है वो तो मार्केट से मिलता है, वो कभी भी वो धान को देखा ही नहीं है, वो धान कितना चावल होता है मालूम ही नहीं है, प्रकृति मालूम ही नहीं है, तो उसको क्या बताओगे उदाहरण? तो इतना हद तक कि भागवत या वेद ये कोई भी चीज समझाना भी है, कुछ तो प्रकृति का ज्ञान रहे, कुछ तो ज्ञान रहे प्रकृति का। इसलिए आजकल के ये सब चीजें बताने पर भी लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, अभी मान लो कि प्रकृति का मौसम चल रहा है, ऋतुओं का वर्णन हो रहा है इधर। मैं एक बच्चे से पूछा कितना ऋतु होते हैं, तो ये ऋतु क्या है, कितना मौसम होता है, अभी पता नहीं मौसम होता है कुछ होता है, अभी मौसम बदली हो गया। उनको इतना भी नहीं मालूम छह ऋतु होता है, छह ऋतु का नाम भी नहीं मालूम। देखिए बच्चों को छह के छह ऋतुओं का नाम नहीं मालूम। अभी इस अध्याय में बारिश का ऋतु का और शरद ऋतु का वर्णन हो रहा है। बारिश का ऋतु दो महीना रहता है, शरद ऋतु दो महीना रहता है। बाद में सर्दी का मौसम आता है, बाद स्प्रिंग आता है, बाद में गर्मी का मौसम आता है। ये सब चीज़ें उनको मालूम ही नहीं इस बात को। इसलिए प्रकृति से जितना दूर जाता है व्यक्ति, भगवान से इतना दूर जाता है। तो इसलिए प्रकृति का परिशीलन, उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसके नज़दीक रहना, उसको ध्यान से देखना, इसके द्वारा भगवान की अनुभूति जो है वो जल्दी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। हम सोचते हैं कि एसी ऑफिस में बैठे, कंप्यूटर में सामने बैठे, मोबाइल आजू बाजू में सब है और सामने भागवतम है, पढ़ते जाओ, लेकिन उतना अच्छा भागवतम समझ में नहीं आएगा जितना आप प्रकृति में बैठ के भागवतम पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे। इट इज़ फैक्ट। तो इधर प्रकृति का वर्णन हो रहा है और प्रकृति का वर्णन के साथ साथ में सिद्धांत के रत्नों को निकाला जा रहा है। जो गहरे गहरे सिद्धांत है वो प्रकृति के जो अलग अलग लक्षणों को देख के सिद्धांतिक बातों को बताया जा रहा है। ये जो है और एक वैदिक तरीका है। बच्चों को जब ज्ञान सिखाना होता है ना, तो माता पिता पहले समय में वो कहाँ भेजते थे बच्चों को, गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल कहाँ होता हुआ करता था, जंगल में हुआ करता था। तो जंगल में जब लेके जाते थे बच्चों को, उस समय गुरु जो है जंगल में प्रकृति के अंदर जो भी चीज़ें होती थी उन सबको देख के सिद्धांत को समझाते थे। बच्चों का ऐसा समझ में आता है, नहीं तो ऐसे बताओगे देखो हमारा उम्र जो है क्षीण हो रहा है, हम कभी भी मर सकते हैं, ये सब चीज़ें बोलने से किसी को समझ में आएगा, बोलता होगा कुछ। लेकिन आप जंगल में जाओगे वो सच में अनुभव होगा, कभी भी मर सकता है, क्योंकि शेर कभी भी आ सकता है कि नहीं। ये सही बात है। जैसे कृष्ण और बलराम जंगल में जाया करते थे, अचानक से बारिश आ हुआ, अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया, क्रूर जानवर है, मैं कभी भी मर सकता हूँ, ये बात की अनुभूति कहाँ ज़्यादा हो सकता है। बोलिए बच्चा जब गुरुकुल में जाएगा तब होगा, जंगल में जाएगा तब होगा, या शहर में कमरे के अंदर एसी रूम में बैठा है, हाँ तो उधर ये कैमरा लगा वो लगा हुआ है, उधर होगा, हो नहीं पाएगा। ये जो तात्कालिक कृत्रिम सुरक्षा की जो परिस्थिति में आप डालोगे तो ऐसा रहेगा कृष्ण के ऊपर मेरा भरोसा नहीं, मेरा भरोसा किसके ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, आर्मी के ऊपर है, या बिल्डिंग के ऊपर है, ये चीज़ों के भरोसा ज़्यादा होगा व्यक्ति को। तो साक्षात्कार, वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार तभी होगा जब व्यक्ति बच्चा जो गुरुकुल में जाएगा वैसे इस माहौल में रहेगा। अभी देखिए भगवान रामचंद्र जैसे उन चारों बच्चों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, तो सबसे पहला क्या हुआ, दशरथ महाराज ने उनको जंगल भेजा, जाओ जंगल जाओ, जाओ गुरु के साथ में जाओ। विश्वामित्र क्यों लेके गए, विश्वामित्र के पास थोड़ी ना, उनके पास बड़ा क्लासरूम था, बड़ा कॉलेज था, विश्वामित्र कॉलेज करके। विश्वामित्र कॉलेज कौन सा था, नदी के बाजू में, गंगा नदी के तट में सोए हुए हैं। विश्वामित्र स्वयं उन्होंने लेके आए, घास वगैरह लेके आए, सब अच्छा सा शैया बनाया, राम लक्ष्मण को सुला दिया उधर ऊपर खुले मैदान में, रात भर सोए हुए, और सुबह उठ के गायत्री करके उठा रहे, जाओ गंगा में नहाओ। लेकिन अभी आजकल बच्चों को हमको शिक्षा देना है, पहले स्कूल बनाओ, टॉयलेट बनाओ, बाथरूम बनाओ, ऐसा कुछ था नहीं। रामचंद्र ने ऐसा उस प्रकार के स्कूल में नहीं गया, प्रकृति नामक स्कूल में गया। ऐसा स्कूल खोलना चाहिए कि यह प्रकृति ही स्कूल है, क्योंकि उधर अनुभव होता है, इट्स अ लैबोरेटरी ऑल्सो, खाली क्लासरूम नहीं है। क्लासरूम में तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, व्यक्ति का सड़ जाता है दिमाग। लैबोरेटरी होना चाहिए। लैबोरेटरी क्या है, ये जगत ही लैबोरेटरी है, दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज अवर लैबोरेटरी, और उसी में साक्षात्कार अनुभव होता है। विज्ञान का प्रकाश केवल प्रकृति नामक लैबोरेटरी में हो पाएगा, वैसा क्लासरूम में नहीं होता है। नवीशारण्य में भागवत कथा हुई, कहाँ हुई थी, बड़ा एसी हॉल में हुआ था, भागवत कथा नहीं हुआ था, इट डजंट हैपन। बैठे जगलो 88,000 ऋषि, माइक भी नहीं था उनके पास। तो प्रकृति इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हम लोग बोलते हैं भौतिक चीज, इट्स ऑल मेटीरियल, और उसी के द्वारा भगवान को जान सकते हो, क्योंकि भगवान ने आप उनकी शक्तियों को प्रकाशित किया है। इसलिए सर्वम कलविदम ब्रह्मन क्यों कहा गया है वेदों में, इसलिए कहा गया है आपको भगवान को जानना है सर्वत्र अपने आजू बाजू में जो भी चीजें वो देखो उसी से ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अभी इस श्लोक में खास करके पिछले की दो श्लोक में बहुत सारी चीजें बताया गया था। पिछले श्लोक में परसों के श्लोक में चर्चा किया किस प्रकार जब बारिश का मौसम समाप्त होता है शरद ऋतु शुरू होता है क्या होता है पहाड़ों से पानी बहता है। जब पहाड़ों से पानी जब बहता है तो कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके पीछे रहस्य को कल बताया था परसों बताया था कि जब पहाड़ों में से जो पानी आता है बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी बहता रहता है लेकिन वो पानी क्या है गंदा पानी होता है, हाँ मिट्टी से मिला हुआ पानी रहता है। लेकिन शरद ऋतु का जो पानी है वो पानी क्या है पत्थरों में स्टोर्ड पानी है। तो पत्थर में जो पानी रहता है ना वो एकदम बिल्कुल साफ रहता है क्योंकि सारा मिट्टी अंदर चले जाता है और पत्थर में जो पानी है एकदम बिल्कुल पता नहीं उसका सफाई ज़्यादा रहता है। जैसे आप बोरिंग करोगे कभी कभी आप मिट्टी में से भी पानी आता है वो मिट्टी का पानी रहता है वो कभी कभी क्या हो जाता है समर में सूख जाता है और पानी निकलता है तो मिट्टी का पानी निकलता है। लेकिन अगर पत्थर मिला वो पत्थर के अंदर से आप पाइप डालोगे पंप डालोगे और पत्थर के बाद लेयर में पानी मिलता है वो हमेशा रहता है समर में भी सूखता नहीं है। तो ये जो पानी के विषय में कहा गया इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। कल हमने बहुत सारे उदाहरण को चर्चा किया परसों किस प्रकार जड़ भरत ने जब तक राजा रघुगण ने पूछा नहीं तब तक ज्ञान नहीं दिया। नारद जी ने किसको ज्ञान दिया वो एक शिकारी को मृगारी को ज्ञान दिया और प्रहलाद महाराज ने असुर के बच्चों को ज्ञान दिया उन्होंने है कि नहीं। उनके ऊपर है वो कभी देते कभी नहीं देते किसको देते कब देते वो कोई नहीं कह सकता है। ये हमने उदाहरण दिया बक्सीहंस ठाकुर का गौर किशोरदास बामा महाराज का रामानुजाचार्य का एक तरीके से देखा जाए रामानुजाचार्य के गुरु ने क्या किया रामानुजाचार्य को ज्ञान मंत्र का रहस्य मंत्र देने के अष्टाक्षरी का रहस्य सिखाने के लिए उनको बहुत सता दिया अनेकों साल सता दिया 17 बार घुमाए लेकिन वही रामानुजाचार्य उनका मन कुछ अलग है उनको जैसे मिलते सबको दे दिया बुला बुला के जबरदस्ती दिया। तो ये कल हमने चर्चा किया पिछले श्लोक में चर्चा किया। तो आज के श्लोक में इसी प्रकृति का वर्णन हो रहा है। आप देखेंगे बारिश के मौसम में कुछ जो नीचा रहने वाले जो ज़मीन होता है नीचे रहने वाले ज़मीन में पानी भर जाता है और ये पानी बारिश समाप्त होने के बाद धीरे धीरे से घट जाता है। बड़ा प्रकृति का विचित्र खेल देखिए अभी खाली नीचे ज़मीन है और उसके अंदर बारिश के मौसम में पानी भरा उसके अंदर भी मछली आ जाती है वो कहाँ से आता है पिसको मन में। हम लोग बोलते हैं ना कि मछली बच्चे अंडा देते हैं तो उससे मछली निकलता है। अभी आपका केवल एक लो लाइन ग्राउंड है फॉर एग्जांपल इतना 10 फुट का 10 फुट का कोई गड्ढा है समझ लीजिए तो गर्मी के मौसम में पूरा सूख गया उधर कुछ नहीं है पानी नहीं तो मछली कहाँ से आया। बारिश के मौसम में वो गड्ढा भर गया भर जाता है आप देखो भरने के बाद कुछ ही दिनों में मछलियां घूमती रहेंगी उधर कहां से आया मछली बताइए। ये विचित्र चीज है कितना भी साइंटिस्ट रिसर्च कर ले इसको बोल नहीं सकता कोई। मैं बचपन में ही देखता था हमारे घर में बारिश के मौसम में बहुत भर जाता था तो मछली आ जाती है कहां से आती है। हमने यही सुना है ना मछली जब अंडा देता है तो अंडे से मछली आता है उधर तो मछली था नहीं तो मछली आएगा बारिश से आए ऊपर से आए क्या ठीक है बोल सकते हैं बाहर का दूसरा तालाब से आए वो कैसे चल के आए भाई इधर वी कैन जस्ट कैन नॉट से है कि नहीं। ये बड़ा विचित्र चीज है प्रकृति जो है इतना विचित्र है कितना भी साइंस पढ़ लो कितना भी सभी साइंटिस्ट बन जाए ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता प्रकृति की विशेषता को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तब उपनिषद का बात सही हुआ उपनिषदों में कहा गया है जीव का कहाँ से आता है प्रभुपाद भागवत में लिखते हैं जीव का वो इस पृथ्वी में जन्म लेने का कारण क्या है प्रभुपाद लिखते बारिश का बूंदों से क्या आता है आत्मा आता है। जो वो बारिश की बूंदों से आत्मा आता है उधर से वो अन्न में होता है अन्न से वो पुरुष के शरीर में जाता है। ये साइंस थोड़ी ना है ये तो माइथोलॉजी बोलेंगे। लेकिन अभी ये बताओ कि ये मछली आया कहाँ से है मछली आया कहाँ से तो बारिश से ही आया ना तो उसके लिए कोई नहीं 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 कुछ आया होगा, कोई पहले से कुछ अंडा रह गया होगा, अंडा रह गया तो पानी के में मर जाता, कोई मछली आके अंडा दे के चला गया है क्या? नो, ये प्रकृति है। बड़े परिशीलन करने के ध्यान से देखेंगे तो उसी प्रकार के जो इसके बारे में हो रहा है, यथायोर अन्वहम, ये जो नैव विदन क्षीयमानानं जलम गाढ़ जले, गाढ़ जले का अर्थ यही है, जो बड़ा बड़ा तालाब होता है ना वो सूखता नहीं है, उसके अंदर तो मछलियाँ रह जाते। गाढ़ जले, गाढ़ जले मतलब क्या है? शैलो वाटर, बारिश के मौसम के वजह से बारिश के पानी से भरा हुआ जो जल है वो बारिश के मौसम समाप्त होने के बाद धीरे धीरे से क्या होता है, वो कम होता है। अभी ये जितनी मछलियाँ उसके अंदर हैं वो पता नहीं कहाँ से आए, जो भी हो तो बात की बात है, ये मछलियाँ क्या है बड़े आनंद से रहते हैं, वाह मजा कर रहे हैं वो लोग, उसको मालूम नहीं है ये जल जो है वो धीरे धीरे से सूखता जा रहा है और जैसे सूख जाएगा पूरा सब मर जाएंगे। ये बात इधर ही लिखा है, ये प्रकृति में देखा हमको दिखाई भी पड़ता है, इतना बड़ा 10x10 फुट की बात नहीं है, ये भी देखा है एक छोटा सा गड्ढा भी हो जाता है ना, इतना छोटा सा गड्ढा उसके अंदर छोटी छोटी मछली आ जाती है, वो कहाँ से आता है वो भगवान ही जाने, और वो एकदम बिल्कुल वो घूमता रहता है, खेलता रहता है, आनंद से रहता है, अभी बस हमको बड़ा साम्राज्य मिल गया करके, हम जहाँ चाहे स्वेच्छा से घूम सकते हैं करके, उसी वक्त क्या होता है धीरे धीरे से जैसे कम हो जाता दिल दो, तो उसका तुलना किससे किया गया है, यथा किस प्रकार, उसी प्रकार आयुर अन्वहम क्षयम, आयुर अन्वहम क्षयम, ये जल की कमी होना या कम होते जाना उसका तुलना किया गया है हमारी आयुष कम होने के बराबर। आयुष कम होता जा रहा है, जल भी कम होता जा रहा है, मतलब क्या है मृत्यु के नजदीक में जा रहे हैं, आयुष कम होता जा रहा है मतलब मृत्यु के नजदीक में जा रहे हैं। आयुर हरति वै पुंसान उद्धन्यस्तम चन्नसो तस्यार्थे क्षणो नीता उत्तम शुक्लवाक्या, भागवत में इस बात को कहा गया आयुर हरति वै पुंसान, आयु को हर रहे, सूरज सूरज को उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, उदय होता है अस्त होता है और आयु धीरे धीरे से जा रहा है, लेकिन जितना आयु कम होता जाता है वो सोचता है कि मैं और जीऊंगा। अभी एक सरल प्रकृति की बात है, प्लेट में बहुत सारा आहार रखा हुआ है और जितना आप खाते जाओगे उतना आपको क्या होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। तृप्त होकर क्या करना चाहिए, अभी बस अभी हो गया मेरा, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, ऐसे बोलोगे ना। मान लो कि आप खा रहे हो, बीच में कोई फोन करता है तो क्या है, मैं 2 मिनट में खत्म करके आ रहा हूँ, बोलोगे ना। लेकिन जब जीवन जीने की बात होता है तब हम क्या बोलते हैं, नहीं और है, और बहुत है, और बहुत करना है, और बहुत जीना है, नहीं अभी कम होता जा रहा है, आपका लिमिटेड टाइम है, इतना ही है, आपके कर्मों के अनुसार किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, किसी का 90 साल, हो सकता है बहुत भाग्यवान या दुर्भाग्यवान जो भी है समझ लीजिए कि 100 साल जो भी है 100 साल, कल 100 साल से अधिक मतलब गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ भी सकता है, मालूम नहीं। तो और जैसे उम्र बढ़ता रहता है व्यक्ति से आज क्या सोचता है कि और जीऊं और जीऊं और जीऊं, ये मोह में रहता, उसको मालूम नहीं है वो जी नहीं सकता, उनको मृत्यु को सामना करना ही है, ही हैज टू फेस डेथ। तो यथा आयुरन हम क्षयम, क्षयम जितना क्षय होता है उतना आशा ज्यादा करता है जीने की। अभी यही व्यक्ति कभी जो परेशानी होता है ना, कभी बोलते बस अभी मर जाऊं, बोल लेता कभी व्यक्ति, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में दाखिल होता है ना, डॉक्टर कुछ और समय दे देना, अभी कुछ ही दिन पहले बोला था ना मैं मर जाऊं, अच्छा मूर्खता देखिए, हाँ मतलब झूठ बोला था। कभी कभी लोग बोल भी देते हैं, मतलब बहुत परेशानी हो रही, मतलब बस अभी मर जाओ तो अच्छा है, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाके जब डॉक्टर आता है तुरंत बोलते हैं थोड़ा और बचाओ और जीना है मुझे तो ये इसको कहते हैं अज्ञान, मूर्खता, उसका प्राण क्षीण होते जा रहा है, तो क्षीण होते जा रहे हैं तो उसको और सतर्क होना चाहिए, जाने की तैयारी होना चाहिए। जिस प्रकार बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, जैसे एक एक समय एक एक घंटा बीतता है, एक एक पीरियड बीतता है ना, सब सामान वामान पैक करते हैं, पैक करके क्या होते हैं जाने की तैयारी में रहते हैं कि नहीं, जैसे बेल बजता है तो कैसे बड़े आनंद के साथ बाहर निकलते हैं कि, तो वैसे बच्चों को तो सीखो। एक बार वो मैं स्कूल में प्रोग्राम देने गया था, कॉलेज में प्रोग्राम, विडो कॉलेज बहुत, तो ऊपर की माले में था, नीचे स्कूल चलता उनका महेंद्र में, तो बेल बजा, बेल बजते बच्चे ऐसा एकदम बिल्कुल बाहर निकले ना, तो मैं भी सोचा कि हमारी जब बेल बजेगी ना तो मैं भी आनंद से जाऊं इस जगत को छोड़ के। तो जब हड्डियां कुर कुर करने लग जाती है, बताए बेल बजना हुआ, तो तब खुश हो जाओ क्योंकि अभी थे इधर से जाने का मौका मिल रहा है, तभी दुखी हो जाता व्यक्ति, और मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, ये है बेल बजने का संकेत है, और बेल का वो डंडा रहा निकाला जा रहा है, कुरकुर आवाज आ रहा है, अभी बजने वाला है, बजते ही अभी निकलो। इसलिए शास्त्र में कहा गया है जब तक आपका शरीर है वो तो शरीर को अच्छी तरह देखभाल करो, और जब बेल बजता है शरीर का तो क्या करो, विष्णु का स्मरण करो, अभी जाने का तैयारी करो, डोंट ट्राई टू स्टे इन दिस वर्ल्ड, इधर ही मैं रहूंगा, नहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मेरे बिना कैसे होगा, मेरे बिना ये लोग कैसे जाएंगे, उसके बारे में स्मरण मत करो, अभी तैयारी करो, जस्ट पैक अप, जो भी है हिसाब किताबें बच्चों को दे दो, सब कुछ दे दो, अभी कोई आके पूछता भी तो बोल लेना कि मुझे नहीं मालूम, मैं तो भूल गया है, ऐसा बोल दो, नाटक करो जड़ भरत जैसा, लोग सोचेंगे पागल है, बेवकूफ़ है, फालतू है, और मन ही मन में तो आपको बहुत समय मिलेगा भगवान का स्मरण करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे समय बढ़ता रहता है ना तो समेट लेना चाहिए, आपके पास जो भी है सबको बांट के धीरे धीरे से मूर्ख जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बहुत नीति शास्त्र वर्णन कहा गया है कि जैसे वृद्धापा आता है तो आपको ज़्यादा मूर्ख जैसा लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, लोग सोचे कि आप बहुत मूर्ख हो, कोई काम के नहीं हो, तो आपको बहुत समय मिलता है भगवान का स्मरण करने के लिए। क्योंकि अभी समेट रहे हो, अभी जा रहे हो, जाने की तैयारी है, तो ये आयुर्वेद में कहा गया है कि शरीरे जार्जरी भूते व्याधिग्रस्ते तथा परे औषधम जाह्नवी तो यम वैद्यो नारायणो हरि। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है उस समय क्या करना चाहिए, तो आपके शरीर जार्जरी भूते, शरीर सब एकदम बिल्कुल हड्डी वड्डी लूज हो गया, व्याधिग्रस्त, अनेकों अनेकों व्याधियाँ हैं, व्याधि का नाम भी नहीं मालूम, ऐसे ऐसे व्याधियाँ आ गए, व्याधिग्रस्त है, मृत्यु आने वाला, उस समय क्या करना चाहिए, एक ही की ओर भरोसा करो, किसके ऊपर, औषधम जाह्नवी तोयम, औषधि क्या है, गंगा जल, वैद्यो नारायणो हरि, नारायण हरि जो है वही एकमात्र हमारा वैद्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, एक साल बीतता है तो आपको जाने की तैयारी करना चाहिए। मेरे स्कूल में रोज यही काम था, फर्स्ट पीरियड के बाद मैं यही सोचता था कब आएगा बिल, कब बचेगा बाहर जाने की। एक बार ऐसा मुझे अभी भी याद है, लास्ट पीरियड चल रही थी, सब बुक्स सब बैग में डाल के, ऐसा पूरा बैग पैक करके ऊपर रख के ऐसा जाने की तैयारी होता, टीचर बहुत क्रोधित होकर गुस्सा होकर मुझे खड़ा करके सबके सामने मारना शुरू किया दो तीन स्केल भी टूट गया, स्केल से मारते थे ना पहले, अभी तो पता नहीं किससे मारते कि नहीं मारते, वो भी नहीं मालूम। तो मैंने पूछा क्यों मार रहे हो, तो उन्हें क्या जाने की तैयारी में हो तुम, तो उन्होंने कहा लास्ट पीरियड में जाना ही है ना, उसके बाद दो ही क्लास तो है ही नहीं, तो और गुस्सा कर दिया और गुस्सा कर दिया। तो जाने की तैयारी जो है वो सबको महसूस करना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू गो गेट आउट, नहीं तो ये समय बीतता जा रहा है, उम्र घटता जा रहा है, उसका स्मृति नहीं रहेगा, हम सोचेंगे अभी कुछ नहीं हो रहा है, बराबर एकदम बिल्कुल सारू छे, सब कुछ सारू है, कोई सारू नहीं है इधर तो खास करके लिखा गया नरा मूढ़ा कुटुम्बिनहा, नरा मतलब मनुष्य, नरा मूढ़ा वो मूर्ख है, वो जानता नहीं किस प्रकार मूर्ख है, मछलियाँ जैसा मूर्ख है, पानी का जो जल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, वो सूख जाएगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी जितना आयुष बढ़ता है वो इतना आशा करता है कि हैप्पी बर्थडे मनाओ, मेरा जन्मदिन और मनाओ। दक्षिण भारत में किसी पिता है, पता नहीं उत्तर भारत में ऐसी नहीं है, ऐसी पिता है कि नहीं, 60 साल उसको षष्ठी बोला जाता है, षष्ठी पूर्ति बोला जाता है, 60 साल का बर्थडे मनाते हैं, वो बहुत स्पेशल माना जाता है, पता नहीं आपको इधर भी उत्तर भारत में ऐसा है कि नहीं, 60 साल का बर्थडे मनाते हैं, वो साउथ में बहुत चलता है, वो माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी 60 साल की बर्थडे बनाए, और उसके लिए मान लो कि पिता कहीं बच्चे कहीं भी अमेरिका में, वो सब आते हैं, 60 साल का बर्थडे मनाना बड़ा फंक्शन होता है, और वो फंक्शन में और मूर्खता वाली क्या बात होता है मालूम है, उनका वापस शादी कराते। ये ऐसा फंक्शन हो गया है, अगर वो फंक्शन नहीं करेंगे ना, माता पिता बहुत नाराज हो जाते हैं, कैसे बच्चे हो तुम लोग, हमारा षष्ठी नहीं करते हो, षष्ठी पूर्ति इसका एक फंक्शन का नाम भी है, षष्ठी पूर्ति मतलब 60 साल की पूर्ति, ये भी नहीं करते, बड़े गुस्से हो जाते हैं, बड़े नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, शादी में नहीं गए तो भी चलेगा, लेकिन षष्ठी पूर्ति में आना चाहिए, बच्चों को सब परिवार वालों को बड़ा फंक्शन होता है। तो बाद में थोड़ा रिसर्च किया मैं, ये क्यों होता है, ये कौन सा वेद में लिखा है, ये कोई वेद में नहीं लिखा है, ये कोई संस्कार ऐसा सोचा है, ये भी संस्कार भी नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसका इतिहास में थोड़ा सा पढ़ा। रिसर्च करते करते एक विद्वान के पास गया, तो विद्वान से मैंने पूछा, संस्कार में एक्सपर्ट है, बड़े अच्छा ब्राह्मण है, वैष्णवी और हमारे मधु संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, तो मैं ही पूछा क्या है, तब उन्होंने हंसते हंसते कहा, मैं सच कहूँ बताए, मैं इसी के तो आया, मैं आपसे पूछने के लिए, होता क्या है। तो उन्होंने कहा पहले जमाने में ऐसा था कि पंचसे ऊर्ध्व वनम व्रजेत, 50 साल हो गया तो क्या करना चाहिए, वन जाओ, भगवान की भक्ति करो। तो मान लो 50 साल के बाद भी वन में नहीं जाता है, अभी भी कुटुंब राम यानी कुटुंब में ही भ्रमण करने के लिए प्रयास करता रहते, मैं परिवार को करूँ, इसका करूँ, इसका मेरा पोता, मेरा ये, मेरा पत्नी, इसी में चलता रहता है, तो 50 साल के बाद भी इसी में लगा रहता है। तो उसको अवहेलना करने के लिए जैसे मान लो कोई बहुत गड़बड़ कर रहा है एक बच्चा, उसको टीचर बुलाई सबके सामने, बहुत अच्छा काम किया, ये क्या है, उसका अवहेलना हुआ ना, उसका तारीफ थोड़ी ना हो रहा है, मूर्ख बच्चा सोचता है कि वाह मेरा तारीफ हो रहा है, मैं अच्छा काम किया। वो अगर खुश हो जाता है सुन के, उसको और मार पड़ती है कि नहीं। तो उसको वो ऐसे व्यक्ति को अवहेलना करने के लिए, फिर अभी 60 साल हो गया ना, अभी नौजवान हो, वापस शादी करते तुम्हारा, चलो ये षष्ठी मूर्ति जो है ये का शुरू किया गया था उसको अवहेलना करने के लिए, ताकि छोड़े। लेकिन अभी ऐसी पिता बन गई, अगर वो नहीं होगा तो मेरे से कोई प्रेम नहीं करता है, इसको बोलता है मूढ़ा, पूरा समाज मूढ़ हो चुका है। उसने कहा शुरुआत इसलिए किया गया ताकि उसको अवहेलना हो, उसको दिल में एक चोट लगे, पता लगे तुम मूर्ख हो, अभी कम से कम अभी छोड़ो, अभी भगवान की सेवा करो, जाओ मंदिर में जाओ, दिन भर बैठ के सेवा करो उधर, अभी जाने की तैयारी करो, रहने की तैयारी मत करो। उसको अवहेलना करने के लिए ये विधि शुरू हुआ है, लेकिन अभी एक ऐसी विधि हो गया है, वो सोचते उसमें गर्वित होते हैं, दे बिकम टेक प्राइड इन दिस, हाँ उसको उसमें आनंद लेते हैं कि मेरा होना चाहिए, मेरा बच्चा, मेरा षष्ठी किया, बहुत अच्छा किया। ये विधि शुरू किया गया था अवहेलना करने के लिए, ताकि विदुर आके धृतराष्ट्र कहा था ना अभी कुत्ता जैसा जी रहे हो, ये बात कहने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन अभी ये क्या हो गया, एक ऐसी पिता होगी, एक संस्कार, भले ही कोई संस्कार करे ना करे, ये संस्कार तो कर, ये संस्कार तो है नहीं, ये तो अवहेलना की बात है, ये करते हैं, उसको मूढ़ा कहा गया है, मूढ़ा कुटुंबिना। तो इसलिए सतर्क होना चाहिए, कालोस्मि लोकक्षय कृतवृद्ध, काल जो है हमको खाता जा रहा है, धीरे धीरे से अभी समेटो, जो भी किया ना सब धीरे धीरे से ये करो, उसको डेलीगेट करो, ऑफिस में होता है ना, डेलीगेट करो, तभी जीवन सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस? हाँ, बराबर है वो, लेकिन समझता नहीं ना, समस्या यही है। उनका प्रश्न है कि जैसे उम्र बढ़ता जाता है उसका कीमत कम होता है, तो कीमत कम होता है तो समझना चाहिए, कीमत कम हो रहा है तो मैं बेकार हो गया हूँ, अरे भगवान की दुनिया के लिए बेकार हूँ, लेकिन भगवान की नज़र में मैं मेरी नज़र है, उनकी नज़र में मेरी दाम बढ़ रहा है, तो जहाँ जो भाव देता है उसके पास जाओ ना, क्यों जो भाव नहीं देता उसके पास क्यों जाते हो, उधर रहते क्यों हो। सदा बुद्धि ना, कोई आपको रोज गाली दे रहा है, डांट रहा है, किसी को ट्रीट नहीं कर रहा है, उधर क्यों रहते क्यों, और भाव दिखाने के लिए जानते हो मैं कौन हूँ, ये किया वो किया, बोलने की क्या जरूरत है, अभी वो सब किया है खत्म। लड़का बोलेगा तुम्हारा जिम्मेदारी थे किया किया, बराबर वो भी बराबर नहीं किया बोलेगा। नहीं ऐसे स्थान में क्यों रहते हो जहाँ इज्जत नहीं मिलता उधर रहना नहीं चाहिए, ठीक है? कम से कम इज्जत के खातिर तो सोचो। बुद्धि ज्ञान वो दूसरी बात की बात है, इज्जत के खातिर तो सोचो। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।